आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं लक्ष्मीनिवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस पर सहजानंद जी शुल्लक मनोहर जी वर्णी के जो प्रवचन हुए हैं उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी तक अपने चौथा श्लोक पढ़ा हमने। ये जैसे कुछ मेघ भी वाचाल होते हैं और कुछ लोग भी वाचाल होते हैं, यानी भीगे मेघ यानी जो पानी बरसने वाले मेघ थोड़े होते हैं, वैसे जिनका हृदय भीगा हुआ है करुणा से ऐसे भी उपदेश दाता जो है वो दुर्लभ होते हैं। अभी हम 13 नंबर के पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। कल ये बात हो गई थी कि इंद्रियों में जो आँखों से अधिक उद्दंडता होती है अन्य इंद्रियों के द्वारा एक्चुअली जानने का ही कार्य करता है, पर वो तो मान रहा है मैं भोग रहा हूँ उसमें आँखों के द्वारा अधिक उसमें जुड़ जाता है। तो उस पर अब बता रहे हैं कि आँखों की उद्दंडता के निवारण में विधि का सहयोग। विधि यानी यहाँ पर नेचर प्रकृति, जैसे आँखें बंद कर सकते हैं, पलक बंद कर सकते, ये आंखें बहुत उद्दंड है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि विधि ने पहले से ही एक सहूलियत भी दे दी है। सहूलियत समझते हैं ना, फैसिलिटी एक अवेलेबल है। इन आंखों के ढकने के लिए दो ढक्कन लगा दिए हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का, एंड यू कैन क्लोज योर आईज। सबकी आंखों में दो दो ढक्कन लगे हैं जिन्हें पलक कहते हैं। अरे भैया अब कष्ट क्यों भोगे, उन ढक्कनों का उपयोग कर ले, आंखें नीच ले। पृष्ठ संख्या 13 दूसरा पैराग्राफ, उसमें हमने 5 लाइन पढ़ी है, आंखें नीच ले। यहाँ तक तो हमने कल भी पढ़ा था, सारे संकट और सारी विडंबनाएं मिट जाएगी। ये ढक्कन कितना विशिष्ट काम देने के लिए मिले हैं। ऐसे ही इन इंद्रियों में यह मुंह भी बड़ा चंचल है और उद्दंड है, यानी वो रसना इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए भी दो ढक्कन मिल गए हैं, नीचे का ओठ और ऊपर का ओठ, पर अविवेकी जन इन ढक्कनों का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए बेकार है। उन्हें तो ये ढक्कन न होते तो वे सौभाग्य समझते, रात दिन खाने को मिलता है। कुछ कटु भी उपदेश लगे तो उसको आंखें मीच कर पी जाना, अर्थात साहस बनाकर उपदेश सुनना और उसे धारण करना। इंद्रिय विषयों को संयत करके अपने हित का ध्यान करके इस उपदेश को ग्रहण कर लेना, आनंद ही आनंद मिलेगा, इसकी गारंटी दे रहे हैं। आचार्य देव की अपार करुणा और उनके आभार प्रदर्शन की अशक्यता, यानी हम किसी भी प्रकार से उनके आभार प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनके जो उपकार है उसको हम उतरा ही नहीं हो सकते। हाँ, कितने उपायों से आचार्य देव ने विशुद्ध उपदेश ग्रहण कराने की कोशिश की है, यह उनकी अपार करुणा है। जिन योगीश्वरों ने, योगीश्वर योगी मुनियों को योगी कहते हैं, उनमें श्रेष्ठ राजपाट छोड़कर घर के बड़े सुखों का परित्याग किया, निर्ग्रंथ दशा ही जिनका कपड़ा है। देखो ये निर्ग्रंथ पेज नंबर है 13 नंबर का पेज है, नीचे का पैराग्राफ, नीचे से चौथी लाइन हमने अभी हम पढ़ रहे हैं। दिगंबर क्यों कहते हैं? दिगंबर शब्द कैसे तैयार हुआ मालूम है? दिक यानी दिशा, दिक ही जिसका अंबर है, अंबर यानी वस्त्र, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है यानी जो नग्न है, उसको कहते हैं निर्व्रस्त अवस्था जो है, निर्ग्रंथ दिगंबर। यहाँ कहते हैं निर्ग्रंथ दशा ही जिनका कपड़ा है, केवल एक आत्मज्ञान की ही जिनके लौ लगी है, ऐसी एकाग्रता से वन में रहकर अनेक उपसर्ग सहकर। क्यों वन में चले जाते हैं? क्योंकि वो तो आदमियों से संपर्क नहीं चाहते, लौकिक जनों से संपर्क नहीं चाहते, जिन्होंने आत्मानुभव प्राप्त किया है उन्होंने अपना नुकसान करके भी हम आपके लिए बहुत बड़ी करुणा बुद्धि की है। देखो नुकसान करके भी क्यों कहा, ये तो अपने में ही, हाँ अपने में ही लीन रहते, वो तो आनंद का रास्ता मिल गया उनको, बारंबार अपने में लीन रह सकते थे, फिर भी ऐसा उनको सहज विकल्प आया है और उसके कारण हाँ हमारा भला हुआ है, भले उनका नुकसान है उन्हें। कोई आचार्य ग्रंथ लिखे या उपदेश दे तो वह तो अपना नुकसान कर रहा है, वे आचार्य स्वयं अपना नुकसान हो रहा है उनका, वह आत्म साधना से कुछ हटकर श्रोता जनों की ओर दृष्टि देकर अपना नुकसान कर रहा है। पर हम श्रोता जन यह समझे कि आचार्य देव के हम कितने आभारी बने जो अपनी हानि सहकर भी हमारे लिए ज्ञानानुभूति का कटोरा भरकर रख जाए, यानी हम ज्ञानानुभूति कर सके उसका पूरा मार्गदर्शन करके गए, और जो बड़ी कठिन साधना से मिल सकने वाली प्रेरणा है, बुद्धि है, वह हमें सीधे साधे शब्दों में स्पष्ट कहीं मिल जाए। देखो पहले तो जमाने में तो सूत्र थे, गाथाएं थी, संस्कृत में कितना कितना था, जितने आगे आगे के ज्ञानी हुए उन्होंने और उसको सरल कर किया, और सरल किया और अधिक स्पष्ट करके बताया। कुंदकुंदाचार्य ने तो परमागम लिखे ही लिखे, अमृतचंद्राचार्य ने उसको कितना खोल दिया और स्पष्टीकरण कर दिया, जयसेनाचार्य ने उसको भी और खोल दिया, उसके बाद भी कितने हुए, राजमल जी हुए, बनारसी जी हुए, ये एक ही उसी विषय को और अधिक अधिक अपनी सरल भाषा में समझाते गए। अभी कांजी स्वामी हुए, उन्होंने वो सारे ग्रंथ पढ़कर स्वयं उसका अर्थ लगाकर आत्मानुभूति करके उसको और सरल करके हमें समझाया, अपनी अपनी भाषा में, आजकल की भाषा में समझाया। तो इन सारे ज्ञानियों के हमारे अत्यंत उपकार है कि इतने साल हो गए महावीर भगवान के बाद, फिर भी ये आत्मानुभूति का मार्ग अभी तक हमें उपलब्ध है। इसके लिए हम गुरुजनों का कितना आभार माने। ये संसार के सारे समागम साथ न देंगे, बाकी धन वैभव परिवार ये कुछ अपने साथ निभाने वाले नहीं है, जब तक है तब तक भी एक न एक चिंता शोक शल्य ही उत्पन्न करते रहेंगे, वे उत्पन्न करते रहेंगे ने हम ही मोह के कारण उनके बारे में विकल्प उठाते रहते हैं। तो ऐसा कहने में आता है कि ये जो संसार के जो सारी बातें हैं, समागम है, किसी जीव का नाम नहीं लिया है, किसी रिलेशन का नाम नहीं लिया है, सारे समागम धन संपत्ति वैभव घर दार सब कुछ आ गया उसमें। तो कहते चिंता शोक शल्य उत्पन्न करते रहेंगे, किंतु यह ज्ञान प्रकाश के अनुभव की चर्चा है जिससे हम ज्ञान संस्कार बना सकते हैं। यह ज्ञान संस्कार हमें सदा साथ देगा और प्रसन्न रखेगा। अब आचार्य देव कुछ थोड़ी और भूमिका बनाकर आगे अपना वक्तव्य प्रकट करेंगे। अभी शार्दूल विक्रीड़ी पांच नंबर का चार शार्दूल विक्रीड़ी थे। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति
प्राक्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो हारी परा निंदया भूयाद्धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमीष्टाक्षर।
ये कुछ खास बात ख्याल में आई? देखो एक प्र से शुरू होने वाले कितने शब्द लिए हैं, हाँ, और फिर कुछ प से शुरू होने वाले भी लिया। ये भूयात होगा क्या ब्रूयात होगा? ब्रू होना चाहिए, ब्रूयात में सांग कथन करना, भूयात कोई नहीं है उसमें, ब्रूयात ब्र प्र में तो 11 आ गए, ब्रूयात लास्ट लाइन पहला शब्द, ये ब्रूयात चाहिए ब्र, उसको एक लाइन करना ब्रूयात। अब वक्ता के लक्षणों का प्रतिपादन करते हैं। इस आत्मानुशासन ग्रंथ में आवश्यक भूमिका स्वरूप प्रतिपादन चल रहा है। इस समय वक्ता के लक्षण कहे जा रहे हैं। पहले तो बता दिया ऐसे वक्ता दुर्लभ होते हैं, वो वक्ता भी कैसे होने चाहिए, उनके लक्षण क्या होते हैं उसको बताते हैं। कैसा वक्ता होना चाहिए जो श्रोताओं के सही काम में आ सके। इससे पहले श्लोक में यह कहा था, यानी 4 नंबर के श्लोक में, कि वाचाल और व्यर्थ उठे हुए अपनी महंतपना जताने के लिए व्याख्यानकर्ता बहुत मिलेंगे। यानी इधर उधर की बातें करना, मनोरंजन करना, बस टाइम पास करना, तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे। किंतु जो अंतरंग से भी गीले हैं, अर्थात ज्ञान की वैराग्य की वासना से जिनका हृदय सुवासित है और साथ ही जगत के उपकार करने की भी शुद्ध भावना है, ऐसे वक्ता लोग बिरले ही मिलते हैं। वक्ता के इस श्लोक में 13 गुण बताते हैं। 11 तो प्र से देखे हमने और प से 2 देखे हैं। ए वक्ता, तेरे गुण इसमें 13 बताए हैं। गुण 13 होते हैं। ए श्रोता, यह तेरे काम की बात सुनाई जा रही है। तेरा वक्ता 13 गुण वाला होता है। ये 14 नंबर के पृष्ठ पर वक्ता के लक्षणों का प्रतिपादन चल रहा है। नीचे से दूसरी लाइन यहाँ कहते 13 उसके गुण बताए वक्ता के। वह वक्ता 13 ही है और वह गुण भी 13 ही है। कैसी वाणी हो, अर्थात गण का संग्रह का नायक, गण नायक कहते ना, गण यानी संघ, मुनियों के संघ को गण कहते हैं और उनके नायक गणधर भी कहते हैं। गणधर तो शब्द हम इतना ही मालूम है कि भगवान की वाणी सुनकर लिखने वाले, पर गणधर क्यों कहते, प्रमुख जो है गण के जो प्रमुख है वो गणधर। आचार्य भी कहेंगे, गणपति का भी अर्थ वही होता है, गण के पति मुख्य, आचार्य भी कहेंगे। तो गण का संग्रह का नायक जो धर्म की कथा को कह सके, उस गणी की इसमें चर्चा है। गणी यानी मुनिराज, उसको गणी कहते हैं। अब कहते प्राज्ञ कहे ना, यानी बुद्धिमत्ता वाले, विशिष्ट बुद्धिमत्ता। वक्ता का पहला गुण बताया है वह प्राज्ञ हो, बुद्धिमान हो, जो लौकिक पारलौकिक भाषा संबंधी अन्य समस्त विद्याओं का जानकार हो, यानी अन्य भी लौकिक भी विद्या में वो कुशल हो, जैसे व्याकरण शास्त्र इसमें भी वो कुशल हो और आगम के ग्रंथों का भी अभ्यासु हो, ऐसा लिया है वक्ता। वह ही वक्ता श्रोता के काम में आ सकता है। बुद्धि एक स्वयं की निर्मलता की देन है। ये बुद्धि क्या बताती है? निर्मलता उस जीव की। जो जीव निष्कषायी अर्थात मंद कषायी होता है उसकी बुद्धि काम करती है। हम ऐसा भी देखते हैं ना, ये तो क्रोध से अंधा होता है तो उसका ज्ञान नहीं काम करता, कषाय तीव्र हो जाती है तो उसका ज्ञान तो वैसे तो बुद्धि काम नहीं करती, उसको विवेक नहीं रहता है, सही और गलत का विवेक उसके नहीं रहता है। सभी बंद करना पड़ेगा। हाँ, जो जीव निष्कषाय अर्थात मंद कषाय होता है उसकी बुद्धि काम करती है और कषाय न करने से बुद्धि का विकास होता है। निमित्त दृष्टि से ज्ञानावरण का क्षोक्षम होने पर बुद्धि का विकास होता है। उसका सही निमित्त बताना है तो ज्ञानावरण का विशिष्ट क्षोक्षम होगा तो यहाँ पर बुद्धि का विकास है, ज्ञान का उघाड़ जिसको हम कहेंगे। क्षोक्षम का अर्थ यहाँ उघाड़। अंग्रेजों के समय की बात है, बुंदेलखंड में एक रियासत का राजा गुजर गया। अब राजमाता और राजबेटा रह गए। सरकार ने रियासत को एजेंट के सुपुर्द कर दिया। जब वह 20-21 साल का हो गया तो राजमाता ने निवेदन किया कि पुत्र अब योग्य हो गया, इसकी रियासत इसे सौंप दी जाए। तो एजेंट ने उस लड़के को परीक्षार्थ बुलाया कि वह राजपद के योग्य वह है या नहीं। तो राजमाता उस बच्चे को समझाती है, देखो बेटा, साहब यूं पूछे तो यह उत्तर देना, यूं पूछे तो यह उत्तर देना। इस तरह से 10-12 बातें खूब समझा दी। तो लड़का बोला, माँ, यदि साहब इन सब बातों में से कोई भी बात न पूछे तो क्या जवाब देंगे? तो राजमाता कहती है, बेटा, जब तेरे में इतनी तर्कणा उत्पन्न हो सकती है तो अब तू जरूर जवाब देकर आएगा। वह बच्चा गया, साहब ने लड़के के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, बच्चे, अब तू क्या करेगा? अब तो तू परतंत्र हो गया, अब तेरा क्या वश चल सकेगा? लड़का बोला, यह तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ, विवाह में पुरुष स्त्री का एक हाथ पकड़ता है तो उसे जिंदगी भर उसका साथ निभाना पड़ता है, अब तो मेरे दोनों हाथ पकड़े गए हैं, मैं अब पूर्ण रक्षित हो गया। इतनी बात सुनकर साहब खुश हो गया और राज्यपद दे दिया। बुद्धि के बिना दूसरों को क्या समझाए? वक्ता में प्रथम गुण बताया है कि वह बुद्धिमान होना चाहिए। ये प्राज्ञ का अर्थ कर दिया उन्होंने। 13 गुण बताए वक्ता के, वक्ता कैसे होना चाहिए उसकी बात। शास्त्र मर्म का वेतृत्व, दूसरा गुण बतला रहे कि वक्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसने समस्त शास्त्रों का हृदय पा लिया हो। प्राप्त बताए ना, प्राज्ञ प्राप्त, कि समस्त शास्त्रों का हृदय पा लिया, हृदय का तो उसका भाव समझ लिया है, मर्म समझ लिया है। शास्त्रों को पढ़ लेना और बात है और शास्त्रों का हृदय पा लेना और बात है। रामचरित्र के बाबत लोकजनों में एक प्रसिद्धि है कि रावण के साथ युद्ध होने के समय वानर सेना ने समुद्र को लांग डाला। तो समुद्र के लांग लेने से क्या उन वानरों को यह पता हो सकेगा कि समुद्र के भीतर कैसे कैसे कहां कहां रत्न पड़े हैं? यो ही कोई पंडित भाषाओं के बल पर शास्त्रों को देख डाले, एक ओर से पन्ना पन्ना पढ़ डाले, शास्त्रों को लांग डाले, तो क्या वह इतने मात्र से इन शास्त्रों में क्या रत्न भरा है, क्या मर्म पड़ा है, इसे पहचान सकता है? इसका अर्थ जो संस्कृत का जानकार होगा या उस भाषा का जानकार होगा, भाषा तो उसको समझ में आ जाती है, क्या लिखा है वो तो पढ़ सकता है क्योंकि अक्षर ज्ञान तो है उसके, परंतु उसका सही मर्म नहीं ग्रहण कर पाएगा, वहाँ क्या कहना चाहते वो बात उसके समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि हमने देखा शास्त्र के अध्ययन में भाव कर, अर्थ करने की भी कितनी पद्धतियां होती है, क्या उनको कौन सी मालूम है? आगमार्थ, हाँ आगमार्थ है, यानी आगम का अर्थ शब्द का, शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, भावार्थ, अलग अलग इतने होते हैं, पांच होते हैं, इतने पद्धति से उनका अर्थ करना पड़ता है। एक तो एक्चुअली शब्द का डायरेक्ट अर्थ क्या होता है, फिर उसमें आगम में उसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि लौकिक में वही शब्द है, द्रव्य शब्द लौकिक में भी आता है और यहाँ पर भी द्रव्य कहते हैं। दृष्टि का विषय या दृष्टि कहाँ है तुम्हारी दृष्टि, दृष्टि यानी देखना, वो तो क्या है, और यहाँ उसका अर्थ अलग होता है। तो ये आगम में उसका क्या अर्थ है वो बात अलग है, केवल शब्द का अर्थ अलग है और आगम में उन शब्दों का क्या अर्थ होता है वो बात अलग होती है, और उस विषय में उसका क्या अर्थ है वो भी अलग हो सकता है। वहां पर नए की अपेक्षा उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ये सब समझने चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है वह यद्यपि सीधा लिखा है पर उसमें मर्म क्या है, ये मर्म है इसका भाव कैसे पकड़ना। जैसे हम बहुत बार स्टोरी बताते हैं ना कि एक माँ का एक लड़का था, वो बिचारी मोल मजूरी करके कमाती थी और बच्चे को पढ़ाती थी, तो बच्चा स्कूल में जाता था, रोज आता था शाम को जल्दी 5 बजे 5:30 बजे तक आता था। एक दिन बहुत लेट हुआ, 6:30 बजे तक आया ही नहीं, फिर आया तो माँ तो एकदम उसके लिए तो व्याकुल हुई थी, कहाँ गया था, क्या कर रहा था, कहाँ था तू, मैं सिनेमा देखने गया था। वो भड़क गई, जा दूसरा शो देख क्या,
बहुत सियाना है तू,
बहुत सियाना है, जा दूसरा भी शो देख क्या। तो वो अरे अब माँ हो तो अच्छी है ऐसी, तो कह के फिर चला गया। तो क्या उसने माँ का भाव पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ख्याल में, वहां तो वो बोलती है ना तू सियाना है जा और दूसरा एक शो देख क्या, ऐसा है। तो कहते उसका मर्म होना पकड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कहते हैं ना वो तो समय समय राग पुद्गल का है, अरे वाह पुद्गल में उत्पन्न होता है, मेरे में राग है ही नहीं है तो अच्छा है, मैं अभी केवल ज्ञानी हूँ ऐसा मान लेगा। इसका पता न हो पाए तो वह वक्ता के योग्य बात नहीं है। वक्ता शब्द बड़ा ऊंचा है, वक्ता कहो, नेता कहो, अपना पोषणहार कहो, अपना रक्षक कहो, ये सब गुण एक वक्ता के अर्थ देने वाले हैं। इन्हें वक्ता शब्द में इतने सारे अर्थ गर्भित है। जिस वक्ता में ये गुण न हो और वक्तापन का अभिमान करे तो लोगों ने उस वक्ता का नाम वक्ता रख दिया। इन्हें वक्ता है क्या, वक्ता है कहते ना, वक्ता अर्थात बकने वाला। जिसने समस्त शास्त्रों का हृदय पा लिया है वही वास्तव में वक्ता है। वो प्राप्त शब्द का अर्थ किया उन्होंने, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, ये पूरा मिलकर एक शब्द है, समस्त शास्त्रों का हृदय जिन्होंने प्राप्त कर लिया ऐसा। मर्म की अनभिज्ञता में विडंबना, यानी मर्म नहीं समझ में आए, अनभिज्ञता है उसको नहीं जानना, जिसने मर्म को नहीं पहचाना, नहीं जाना, उसकी विडंबना, उसकी कैसी वो क्या फजेती, क्या कहते आप उसको, फजेता फजेती क्या कहते मराठी में, फजीती कहते हैं, फजेतो। अच्छा, एक शेर जब गुजरा तो उससे पहले वही में लिख गया, बेटा लोगो कदाचित जब तुम गरीब हो जाओ तो मंदिर की शिखर में धन गड़ा है। गड़ा के बाद है के बाद है के बाद कौमा चाहिए, गड़ा के बाद में। सो माघ बदी 14 के दिन 5 बजे शाम को धन खोद लेना, क्या होगा, हाँ उस समय की उसकी परछाई जहाँ होगी उसको खोदना है, वो तो उधर करने से कुछ नहीं होगा, उधर खोदता तो कभी भी मिल जाता है ना, वहां होता तो। सेठ तो गुजर गया, कुछ दिन बाद लड़के गरीब हो गए तो उसी दिन उसी समय एक कुदाड़ी लेकर मंदिर की शिखर पर बेटा चढ़ गया, वो खोदने का यत्न करने लगा। एक बुद्धिमान पुरुष वहां से निकला, देखा कि यह तो शिखर तोड़ रहा है, पूछने पर वृत्तांत मालूम हुआ तो वह विवेकी कहता है, अबे उतर वहां से, वहां धन नहीं गड़ा है, चल मैं बताऊं जहां धन गड़ा है। वह विवेकी ले गया जहां उस शिखर की छाया उसके घर में पड़ती थी, उस जगह खोदा तो धन मिल गया। अरे लिखा तो सही था कि शिखर में धन गड़ा है, पर उस बेवकूफ में दिमाग में यह नहीं न आया यदि शिखर में धन होता तो माघ बदी 14 के 5 बजे शाम को खोदने का टाइम क्यों बताते। यदि शिखर में धन गड़ा होता तो किसी भी समय खोदा जाने पर मिल जाता, पर वहां तो उसका मर्म समझना था। तो जो मर्म नहीं समझ पाते हैं वे भटकते ही रहते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लग सकता। वक्ता वही वास्तव में यथार्थ है जिसने समस्त शास्त्रों का हृदय पा लिया हो, क्योंकि जिसने पा लिया वही तो बता सकेगा ना, इसलिए इसके लिए आवश्यक बात है। 16 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, लोक व्यवहार की अभिज्ञता। पहले अनभिज्ञता कहा, अभिज्ञता ने भी उसमें नॉलेज उसका होना, यहाँ लिखा ना प्रव्यक्त लोक स्थिति, यानी लोक व्यवहार के बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए। वक्ता का तीसरा गुण कह रहे हैं कि उसके ज्ञान में लोक व्यवहार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट ज्ञात हो। कोई लोग पढ़ लिख कर होशियार भी हो जाएं, किंतु लोक व्यवहार से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, यानी नहीं जानते हैं। लोक व्यवहार में रहने वाले लोगों को तो शिक्षा देना है, यानी उनके सामने श्रोता कौन है, जो लोक व्यवहार में जो है उन्हीं को देना है, तो उनकी भाषा में उनके जो तौर तरीके समझ में आवे तो उनको वो देना ठीक रहेगा। तो लोक व्यवहार में रहने वाले लोगों को तो शिक्षा देना है, और उन लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, किस ढंग से समझाना चाहिए, कौन सा देश किस प्रकृति का है, कहाँ क्या पद्धति है, लोक व्यवहार भी जब तक वह नहीं समझ पाता है तो वह वक्ता विधि विधान पूर्वक श्रोताओं का जैसे हित हो उस प्रकार का उपदेश नहीं कर सकता। वहाँ की चालू रीति वगैरह क्या है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग भी होती है ना, जब मुनिराज तो पूरे भारत भर में कहीं पर भी उनके विहार होते रहते हैं, तो हर एक जगह की अलग अलग पद्धतियाँ होती है, तो उससे वो परिचित होने चाहिए। आशा रहित पना, यानी उनके कोई अन्य आशा नहीं चाहिए श्रोताओं से कि ये मुझे मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, कि मुझे अन्य कुछ बातें। वक्ता में चौथा गुण बताए कि वह आशा रहित हो। किसी शेर से मुझे कुछ आजीविका मिल जाए, रोजगार का कोई काम बन जाए, मुझे नौकरी दे दे, अथवा मेरी खूब खबर करे, किसी प्रकार की आशा रखता हो तो वह पंडित श्रोताओं को यथार्थ उपदेश न दे सकेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यही बात लिखी है ना। हाँ, आशा लोग चाहे ना, वो अगर वो सिखाकर अपनी आजीविका बना लेता है तो उसके लिए तो वो जिसको लोगों को अच्छा लगे वो ऐसा ही बताएंगे ना, वो सच्ची बातें क्यों कहेंगे।
आजकल चालू है ना पैसा लेके सिखाने का जाते,
तो यथार्थ उपदेश न दे सकेगा। उसे तो यह पड़ी है कि ये श्रोता जिस प्रकार से खुश हो सके उस प्रकार का भाषण करना चाहिए, चाहे उसमें धर्म की कोई प्रतिकूलता भी क्यों न हो। एक राजसभा का विद्वान राजा के समक्ष रोज कथा बांधता था। एक दिन वह पुरोहित किसी काम से बाहर चला गया तो उस पंडित ने अपने लड़के को कथा बांचने के लिए भेज दिया। वह कथा बांचने के लिए गया, उसमें निकला कि जो लेश मात्र मांस का भक्षण करे वह नरक में जाता है। राजा खुद मांस खाता था। जब दूसरे दिन पुरोहित आया तो कहा कि तुमने एक ही दिन तो इस लड़के को कथा कहने भेजा, वह उसी दिन न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बक गया। कहता था कि जो लेश मात्र मांस भक्षण करता है वह नरक जाएगा। पुरोहित बोला, महाराज उसने ठीक कहा, जो लेश मात्र मांस भक्षण करता है वह नरक जाएगा, मगर जो सेरो मांस भक्षण करता है उसकी बात नहीं कही गई है। यह श्रोताओं के कितने ही अनुरूप गड़बड़ बात बोलने वाला वह वक्ता यथार्थ वक्ता कैसे हो सकता है जो आशा रहित तो हो, वह ही यथार्थ उपदेश देने में कुशल हो सकता है। किसी भी प्रकार की यश की हो, पैसे की हो, अन्य भी किसी की, कि मेरा अधिकार बना रहे, मैं सबसे बड़ा कहलाऊं, कुछ भी। अब कहते हैं प्रतिभा संपन्नता, इसके लिए क्या शब्द आया था? प्रतिभा परह। वक्ता में प्रतिभा का गुण होना चाहिए। प्रतिभा ही नहीं, उसकी जो बुद्धिमत्ता ही एक प्रकार की प्रतिभा, कौशल्य उसका, जो कुछ। वक्ता में प्रतिभा का गुण होना चाहिए। अपने कषायों के शांत होने के कारण होने वाली काय मुद्रा से, यानी वो शांति उसके मुख पर भी झलकती है, और बुद्धि की प्रखरता के कारण प्रतिभा भी होनी चाहिए। जो पुरुष विद्वान भी है किंतु प्रतिभावान नहीं है, कुछ लज्जित सा होकर शास्त्र पढ़ लेता है, तो वह शास्त्र श्रोताओं के काम नहीं आ सकता। प्रतिभा भी वक्ता में होनी चाहिए। जिसके प्रतिभा नहीं है उसके शोभा नहीं है, यानी वो लोगों पर उसकी छाप नहीं पड़ती है, बड़प्पन भी शोभित नहीं होता है। जब तक श्रोताओं के चित्त में यह बात न जम जाए कि यह महान है और मेरा भला करने में समर्थ है, तब तक उस वक्ता से श्रोताओं को लाभ नहीं होता। प्रशमवान, तो प्रशमत्व। वक्ता में शांति का गुण भी होना चाहिए। स्वयं का परिणाम उक्षम युक्त हो, मंद कषाय हो, जिसे जरा जरा सी बातों में क्रोध आ जाए, ये मंद कषाय हो, यहाँ फुल स्टॉप चाहिए। क्योंकि ये आगे का वाक्य आगे के साथ जोड़कर पढ़ना है, यानी वो कैसा है? शांति का गुण होना चाहिए, स्वयं का परिणाम उपशम युक्त हो और मंद कषाय हो, यहाँ तो फुल स्टॉप कर देना, क्योंकि आगे इससे उल्टा वाक्य है। जिसे जरा जरा सी बातों में क्रोध आ जाए, ये यहाँ कॉमा लगा लो, जो अहंकार की मदिरा पीकर अपने को भुलाए रहे, अर्थात अहंकार भरी बात करे, जिसका अंतरंग मायाचार से वासित हो, साथ ही लोभ हो, और इन कषायों के कारण जिसमें शांति न आ सकी हो, उस वक्ता का श्रोताओं पर प्रभाव नहीं होता है। जिस वक्ता को महान जानकर श्रोताजन अपने आप में प्रभाव उत्पन्न कर सके, ऐसा वक्ता न हो तो वह यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता है। वक्ता में सबसे बड़ा गुण यह भी चाहिए। कोई साधु था, एक मनुष्य उसके पास गया, बोला, महाराज आपका नाम क्या है? जैसे शीतल सागर, नाम तो शीतल है, हा? थोड़ी देर बाद फिर बोला, महाराज मैं भूल गया आपका नाम क्या। अरे बता तो दिया, शीतल सागर। शीतल सागर, अच्छा महाराज अब मैं जान गया आपका नाम ज्वाला सागर है। तो यो अप्रशमता का क्या प्रभाव पड़ा? वक्ता में प्रशम का भी गुण होना चाहिए। प्रागेव दृष्टोत्तरता, प्रागेव दृष्टोत्तर, प्रागेव ने पूर्व में ही उत्तर जानता है ना। वक्ता विद्वान हो, बुद्धिमान हो, भीतर में प्रकाश वाला हो, किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का पहले से उत्तर जानता हो, इस प्रसंग में क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नों को कहकर उत्तर भी देता रहे। सोलोमन जी की भी ऐसी है ना, अब ऐसा पूछेंगे, आप ऐसा कहेंगे, तो उसके लिए ये उत्तर है। हाँ, यदि तू ऐसा कहे तो, यानी उसमें क्या प्रश्न उठ सकते हैं, ये स्वयं सोच लेते हैं उसके ऊपर। इस प्रसंग में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, और कोई शंकाकार इस समय क्या प्रश्न कर सकता है, शंकाकार प्रश्न न कर सके और खुद ही प्रश्न का उत्तर दे दे, इतना विकास जिसमें हुआ है वह वक्ता यथार्थ वक्ता होता है। अब कहते प्रश्न सहता, प्राय प्रश्न सह, वक्ता के गुणों में एक गुण यह भी होना चाहिए वह प्रश्नों को सहन कर सकने वाला हो। कोई कुछ प्रश्न कर रहा हो तो प्रश्नों को सुनकर उतावलापन न आ जाए, कदाचित प्रश्न का उत्तर न जानता हो, यह हो सकता है, छद्मस्थ अवस्था ही तो है। भले ही विद्याओं का निधान है, विद्वान है, फिर भी कोई बात ऐसी दे सकती है कि जिसका उत्तर न आए, तो यह कह देने में क्या बुराई है, इसका उत्तर अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ लेंगे फिर बताएंगे, इतना कहने में कोई शान नहीं घटती है। जो हिम्मत रखता हो वही प्रश्नों की सहनशीलता रख सकता है। प्रश्न सह प्रभु परमनोहारी परानिंदया। छद्मस्थावस्था में संभव ज्ञानहीनता का अनावरण, यानी छद्मस्थ अवस्था है, छद्मस्थ समझते हैं क्या, भूल गए मिली भाई, छद्मस्थ यानी आवरण का क्या, छद्मस्थ शब्द का अर्थ क्या, आवरण सहित, आवरण सहित, छद्म यानी आवरण, जैसे गृहस्थ यानी ग्रह में रहने वाले, तो आवरण के साथ रहने वाले वो कौन है, बारहवें गुणस्थान तक जो सर्वज्ञ नहीं है वो सारे छद्मस्थ है, वो एक इंद्रिय से लेकर सारे जो है, जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ, बारहवें गुणस्थान तक के मुनिराज भी सारों को क्या कहेंगे, एक नाम से छद्मस्थ। तो छद्मस्थ अवस्था है तो सूक्ष्म ज्ञान का उघाड़ ही ना दिख होता रहता है। अभी मनुष्यों में भी देखते हैं, हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं है, ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा है ना। तो छद्मस्थ अवस्था में संभव, संभव यानी पॉसिबल, ज्ञानहीनता का अनावरण। एक गुरु शिष्य थे व्यायाम संबंधी, यानी वो व्यायाम सिखाते थे गुरु। गुरु ने शिष्य को लाठी चलाना सिखाया, सीधी वेल, उल्टी वेल, चौमुखी वेल, जंगमुखी आदि सब प्रकार की लाठी चलाना सिखा दिया। ये हमने नाम भी कभी नहीं सुने। अब वह शिष्य लाठी चलाने में कुशल हो गया। अब शिष्य गुरु से बोला, महाराज अब तो हम आपके साथ लाठी चलाना चाहते हैं, गांव भर का बुलावा करवा कर सबके बीच में लाठी चलाएंगे। तो गुरु कहता है, अच्छा बेटा जा तुझे 15 दिन की मोहलत दे दी, अमुक दिन तुम हमारे साथ लाठी चलाना। शिष्य छुप छुप कर रोज देखा करता था कि गुरु महाराज क्या करते हैं। जो गुरु महाराज करे उसे मैं समझूं और अपनी तैयारी करूं, ताकि लाठी चलाने में हार न खानी पड़े। गुरु महाराज ने अपने दरवाजे के सामने एक 16-17 हाथ का लंबा बांस रख दिया। शिष्य ने देख लिया, इतना लंबा लठ गुरु महाराज ने रखा है, सो उसने भी 30-32 हाथ का एक लंबा मोटा बांस लगुड़ युद्ध के लिए तैयार कराकर रख दिया। अब सोचो तो सही, इतने लंबे मोटे बांस का उठाना कितना मुश्किल है। जब लाठी युद्ध का समय आया तो शिष्य अपना बड़ा बांस लेकर आया। गुरु महाराज ने एक उसी 3.25 हाथ की लकड़ी से ही युद्ध किया और तनिक देर में ही शिष्य को गिरा दिया। शिष्य बोला, महाराज आपने हमें सब कुछ सिखाया था मगर यह हाथ न सिखाया था। कौन सा हाथ, ये अपने द्वार पर 16-17 हाथ का लंबा बांस रख कर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। तो ऐसी बहुत सी विद्याएं और कलाएं सीख ली जाएं और जबरदस्ती जोड़ तोड़ कर अटपट ही किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो इसका प्रभाव श्रोताओं पर भला नहीं पड़ता, उससे भला यह है कि अपनी बिल्कुल स्वच्छता दिखा दे। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हम समझेंगे कोई बड़ा विद्वान मिलेगा उससे या हम ही खुद समझकर फिर बता देंगे। यो वक्ता में एक प्रश्न सहनशीलता का भी गुण होना चाहिए। एक्चुअली वो स्टोरी यहाँ मुझे कुछ फिट नहीं लगी नहीं। हाँ ठीक है ठीक। अब वक्ता की प्रभुता, प्रश्न सह हो गया प्रभु। वक्ता के लक्षणों को बताने वाले इस छंद में 8 लक्षण बता दिए गए हैं। यह 9वां लक्षण कहा जा रहा है कि वक्ता प्रभु होना चाहिए। प्रभु का अर्थ है समर्थ, समर्थ समझते, कैपेबल, जिसको श्रोता अपने से ऊंचा मान सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ वक्ता माने जाते हैं गणधर देव, और उसके बाद आचार्य उपाध्याय, फिर साधु, फिर श्रावक। इस तरह से दर्जे चलते रहते हैं। न मिले कोई गुरु वक्ता तो अपने पड़ोसी साधर्मियों से ही किसी एक को वक्ता मान ले, जो वक्ता अन्य श्रोताजनों की दृष्टि में महान हो। वक्ता की महत्ता धन के कारण नहीं होती, किंतु आचरण शुद्ध हो और ज्ञान भी श्रोताजनों की गोष्ठी में सबसे अधिक हो, इन दो गुणों से संपन्न वक्ता हो, साथ ही गृहस्थ धनिक हो, तो उसकी प्रभुता और भी बढ़ जाती है। खैर, वक्ता को समर्थ होना ही चाहिए। श्रोता जिस वक्ता के प्रति तुच्छता का भाव ला सके, उस वक्ता से श्रोताओं को कोई लाभ नहीं होता। माया व असत आचार से प्रभुता की हानि। अब ये प्रभुता की बात चल रही है और बढ़ा रहे हैं। माया है ने मायाचारी जो सुन, हाँ कपट, और असत है असत्य बातें, उससे ये प्रभुता नष्ट हो जाती है। एक कहावत प्रसिद्ध है, भाई जी के भटा, कुछ लोग जानते होंगे। एक ऐसा कथानक है, कोई भाई जी पंडित किसी सभा में भाषण कर रहे थे। एक प्रसंग में भटा के अवगुण बखान कर रहे थे। भटा इन्हें बैंगन अभक्ष है, उसमें एक अवगुण यह है, उसमें बड़े सघन परत होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दीजिए तो भी उनके मध्य कीड़ा छुपा रह सकता है, ऊपर से ज्ञात नहीं होता। कोई लोग तो भट्टे को सीधा पूरा अग्नि में डाल देते हैं, उसका भुरता करके खाते हैं। कभी कभी उसमें साबुत कीड़ा दिख जाता है तो खाने वाले को ऐसी अरुचि हो जाती है, भट्टा को जीवन भर के लिए छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, तो भट्टा के अवगुण भाई जी बखान कर रहे थे। भाई जी की स्त्री भी उस उपदेश को सुन रही थी। उस उपदेश को सुनकर स्त्री झट घर पहुंची, सोचा कि आज भटा बने हैं, इन्हें फेंक दे, नहीं तो भाई भी नाराज होंगे। सो भटों को डेगची से निकालकर नाले में फेंक दिया। भाई जी को भटा खाने का बड़ा शौक था। भाई जी घर आए, भोजन करने बैठे तो पूछा कि आज भटे नहीं बने हैं। तो स्त्री बोली कि आपके उपदेश को आज सुनकर मैं आई, भटा के अवगुण आप बता रहे थे, सो हमने आकर नाले में फेंक दिया, सोचा कि कहीं नाराज न हो। तो भाई जी बोले, अरे नादान, व्याख्यान किया दिया जाता है दूसरों के लिए। भट्टा को अभक्ष बता रहे थे और लोगों के लिए, हमारा तो भट्टा के बिना भोजन नहीं चलता। नाली के ऊपर से उठा लो, ऐसी करनी कुछ हो, बोलता कुछ हो, इस तरह का मायाचार का पता लोगों को पड़ जाए, ऐसे वक्ता से लोगों को कुछ लाभ नहीं हो सकता। वक्ता अनेक दृष्टियों से प्रभु होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। वक्ता की मनोहारिता। श्रोताजनों की दृष्टि में महान वक्ता का एक गुण यह है, वक्ता मनोहारी होना चाहिए। दूसरे के मन को हरने वाले वचन जिसके मुख से निकले, वही वक्ता मनोहारी हो सकता है। वचनों के संबंध में यह बताया गया है, वचन वही लाभ करता है जो हित मित प्रिय वचन हो। जो वचन दूसरों का हित कर सके, दूसरों को प्रिय लगे, और हित प्रिय होने पर भी वचन परिमित होना चाहिए, लिमिटेड जिसको कहें ना, शॉर्ट और स्वीट, और हितकारी भी होना चाहिए। बहुत अधिक बकवाद करने की प्रवृत्ति जीव पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। कोई वचन प्रिय तो लगे पर जीव के लिए हितकारी न हो तो उन वचनों से श्रोता का भला नहीं हो सकता है। यो तो विषय कषायों की बातें, भोग विलास की चर्चाएं, यहाँ वहाँ की गप्पे बहुत प्रिय लगती है। रात के 10-12 भी बज जाएं तो उस गप्प गोष्ठी के छोड़ने का भाव नहीं होता है, पर उनमें हितपना तो है नहीं। कोई प्रिय वचन भी बोले किंतु वह हितकर नहीं हो तो भी वह अयोग्य वक्ता है। कोई मनुष्य हितकर बात तो बोले मगर बोलने का ढंग ऐसा कठोर हो कि सुनने वाले सुनना ही न चाहे, तो जिन बातों को श्रोता स्वयं न पसंद करे उन बातों से उनका हित कहाँ संभव है। इस कारण वचन ऐसे बोले जाने चाहिए जो हितमय हो और प्रिय हो। इतने पर भी कोई वक्ता बिना प्रयोजन अधिक बोला करे तो अधिक बोलने वाले के वचनों में बल नहीं रहता। इसलिए परिमित वचन होना चाहिए, वचन दूसरे के मन को हरने वाले होने चाहिए। निंदा दूरता परानिंदया दूया। बुयात है ना, क्या ब्रुयात कहा हमने ना, परानिंद या ब्रुयात, ब्रुयात धर्म कथा। हाँ, परानिंद के लिए निंदा से दूर होना, परानिंद या निंदा से पर दूर हो जाना, निंदा दूरता। वक्ता में एक गुण यह भी होना चाहिए वह निंदा से दूर रहता हो। जो दूसरों की निंदा न करता हो और जो स्वयं भी निंद्य न हो, निंद्य, हाँ निंद्य का अर्थ क्या है, जिसकी निंदा की जाती वो निंद्य है। जैसे हाँ, यानी स्वयं भी ऐसे कोई निंदा के योग्य कार्य न करता, निंद्य यानी जैसे निंदनीय। देखो देखो, निंदा तो दूसरों की जाती है, जिसकी निंदा की जाती है वो निंद्य है। जैसे कोई चोर है उसकी हम निंदा कर रहे हैं तो चोर क्या कहलाएगा, निंद्य। तो ये दूसरों की तो निंदा न करे, स्वयं भी निंद्य न हो कि ऐसा कोई किसी को मौका न देके जो निंदा के योग्य कुछ कार्य कर रहा हो, ये निंदे होता है। जैसे ये शब्द कैसा तैयार होगा, यह लगा के जैसे पूजा करते हैं किसी का और पूज्य कहते हैं। पूज्य किसको कहें, जो पूजने के योग्य वो पूज्य, जिसको वंदन करते हैं, वंदन करना ये एक भाव हुआ, और वंद्य यानी जिसकी वंदना करते हैं वो वंद्य। ऐसे निंदा एक किसी की करते हैं, जिसकी निंदा की जाए वो निंद्य है। तो ये स्वयं भी निंद्य नहीं होना चाहिए, यानी जैसे कोई अनाप शनाप कार्य करता रहे तो वो निंद्य है। जैसे खोटा कार्य कर रहा है, खोटा व्यापार धंधा कर रहा है, वो तो निंद्य हो गया। तो दूसरों की भी निंदा न करता और जो स्वयं भी निंद्य न हो, ऐसी निंदा से दूर रहने वाला वक्ता। देखो इसमें से दो अर्थ निकाले, निंदा से दूर होने वाला निंदा नहीं करता हुआ ऐसा भी, और निंदा से दूर होने वाला जिसकी निंदा कोई न कर सके ऐसा, यानी वो निंदा के योग्य कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए कहते निंदा से दूर रहने वाला वक्ता ही यथार्थ वक्ता हो सकता है। जगत के जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ मन वाले होते हैं, लेकिन अज्ञान से मनुष्य मन का बड़ा दुरुपयोग करता है। भला बतलाओ, दूसरे की निंदा करने में निंदक, अभी निंदक ने निंदा करने वाला निंदक को कौन सा लाभ मिल जाता है? अनुभव से विचारो, यानी आपने दो जन है, तीसरे किसी की निंदा चल रही, क्या लाभ मिला आपको उसमें से, सोचकर बताना कहते हैं। अपने मुख से दूसरे की निंदा कर डाले, इसमें खुद को कौन सा लाभ मिला और जिसकी निंदा की है उसका कौन सा सुधार हो गया। और जिन लोगों ने निंदा भरी बात सुनी उन श्रोताओं का क्या उपकार हो गया। अरे उपकार की बात तो दूर रही, इस निंदक ने अपना आशय दुष्ट बनाकर अपना बहुत बुरा किया। ये बुरा तो निंदक का होता है क्योंकि उसने अपने भाव बिगाड़े हैं। और जिसकी निंदा की गई है वह इस आशय को परख जाएगा तो इसके वचनों से घृणा करेगा। वह सुधरे यह बात तो दूर रही, जितने श्रोताओं ने निंदा भरी बातें सुनी वे श्रोता स्वयं ऊब जाएंगे और निंदक को तुच्छ निगाह से देखने के कारण कि इसकी दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति चाहिए, प्रवृत्ति हो गया, प्रवृत्ति पड़ गई है, असर न होगा। निंदा में सबका बिगाड़ है। जो वक्ता दूसरों की निंदा करता है वह यथार्थ वक्ता नहीं है। यथार्थ वक्ता निंद भी नहीं होता, उसमें निंदा योग्य कोई बात ही नहीं है। यो तो प्रभु की निंदा करने वाले भी जगत में भरे हुए हैं। क्या कहते हैं, निंदा करने वाले तो भगवान को भी निंदा करने वाले हैं, पर विवेकी अयोग्यता रूप कुछ मान्यता दे सके तो वह निंदा कहलाती है। वह यह वक्ता निंदा से तो दूर ही रहता है। निंद्य वचनों का घाव, अभी वचन निंद्य यानी जो निंदा करते हैं इसे निंद्य वचन जो है। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर लकड़ी बीन कर गट्ठा लेकर चलने को हुआ। बीन के रहनी चुन चुन कर लकड़ियाँ उठाई तो सामने से एक सिंह आया। उसके पैर में लगा था एक कांटा, सो कुछ कराह रहा था। हाँ बोला, आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। सुनाई नहीं दे, फिर बोलो।
वो ऊपर वाला जो टाइम ग्राफ है ना,
हाँ हाँ हाँ, देखो लास्ट लाइन क्या कहना चाहते हैं कि जगत में तो भगवान की भी निंदा करने वाले मिलेंगे। तो यहाँ तो ये निंदा से दूर, यानी कोई अपनी निंदा न करे उससे दूर। उससे दूर का अर्थ होता है ऐसे कोई निंदनीय कार्य न करे, ये उसका अर्थ होता है। पर विवेकी अयोग्यता रूप कुछ मान्यता दे सके तो वह निंदा कहलाती है। यानी अगर विवेकी लोग उसको बुरा कहे, ये अयोग्य ऐसा कहे तो वो निंदा होगी। नहीं तो भगवान योग्य होने पर भी उनकी निंदा तो की जाती है। जगत में ऐसे भी लोग मिलेंगे, अच्छे पुरुषों को की भी निंदा करने वाले मिलते हैं, उनमें कुछ निंदनीय नहीं है फिर भी करते हैं। परंतु विवेकी पुरुष इनके जिसको होंगे ना कुछ नाम रखने के लिए ऐसा कुछ कार्य बुरा नहीं करे, ऐसा उस वक्ता होना चाहिए। अभी हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे, पेज नंबर 20 पर आए हैं। तो सिंह वो तो दुख के कारण वेदना हो रही थी, उसको कराह रहा था, लकड़हारे के पास आकर बैठ गया। लकड़हारे ने देखा तो उसके पैर में एक कांटा चुभा हुआ था, उसे निकाल दिया। सिंह उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, तुम यह लकड़ी का बोझ अपने सिर पर मत ले जाया करो, हमारी पीठ पर लाद कर ले जाया करो। सब शेर की पीठ पर रोज रोज लकड़ी लाद कर ले जाया करे। पहले तो 15-20 शेर लकड़ी लाद कर लाता था, अब 25-30 शेर लाद कर लाने लगा। फिर एक मन समझते 40 शेर का, 2 मन 3 मन लकड़ी का गट्ठा लाद कर लाने लगा। इस तरह से वह लकड़हारा कुछ ही समय में धनी होने लगा, कारण कि धीरे धीरे उसने 2-2, 3-3 मन लकड़ी लाना शुरू किया। सो लकड़हारा कुछ ही दिनों में धनी हो गया, ये डबल हो गया। एक दिन वह लकड़हारा लकड़ी रख ही रहा था, किसी व्यक्ति ने आकर पूछा, तुम इतना जल्दी धनी कैसे बन गए। तो लकड़हारा बोलता है, मेरे हाथ एक ऐसा गीदड़ लगा है जिसकी वजह से मैं इतना जल्दी धनी बन गया हूँ। सिंह ने इस बात को सुन लिया, यह मुझे गीदड़ बताता है। इस बात को सुनकर उसके दिल पर बहुत बड़ी चोट पहुंची। उसके दूसरे दिन जब लकड़हारा 3 मन लकड़ी का गट्ठा बांधकर इस आशा में खड़ा था शेर आए तो लाद कर ले जाए, तब वह शेर आया और उस लकड़हारे से बोला, ए लकड़हारे, यह जो अपने हाथ में तुम कुल्हाड़ी लिए हो, इसे हमारी गर्दन में बड़े जोर से मारो। यदि नहीं मारते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लकड़हारे ने सोचा, यदि मैं नहीं मारता नहीं हूँ तो मेरा जीवन जा रहा है। तो उसने हिम्मत की और सिंह के गर्दन में बड़े जोर से कुल्हाड़ी मारी। सिंह मरते मरते कह रहा था, ए लकड़हारे, तुम्हारी कुल्हाड़ी की चोट तो मैं सह सकता हूँ, पर वे दुर्वचन जो तुमने मुझे गीदड़ बताया था उसे मैं नहीं सह सका। ये कहते नहीं तो बोलने में जो किसी का अपमान करता है निंदा, तो ये इतना चुपता है उसके। और हम ऐसे कितने अपराधी वगैरह देखते हैं कि कोई नौकर था उसको कोई ऐसा दुरुत्तर किया था, निकाल दिया था, कुछ झगड़ा किया था, तो वो तो बराबर उसका बदला लेने की भावना से कुछ ना कुछ कर लेता है, भले वो जिसको कहें ना किडनैपिंग हो या अन्य जो कुछ है। अभी कितना है क्या समय? समय हो गया ठीक, अभी यहाँ रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान से सूझे